मौलाए कायनात फरमाते हैं कि सबसे बड़ा ऐब ये है कि तुम किसी पर वो ऐब लगाओ जो तो खुद तुम में मौजूद है। प्रोग्राम सुबह जिंदगी में बहुत बहुत खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। हम मौजूद हैं तेहरान स्टूडियो से, 7:32 हो रहे हैं आपकी खिदमत में। उम्मीदवार हैं कि आपने अपनी खूबसूरत सी और प्यारी सी सुबह का आगाज कर लिया होगा। हमसे मुराद मैं और खुर्रम भाई। अस्सलामुअलैकुम,
सलाम अर्ज करता हूँ आपकी खिदमत में भी, अपने प्यारे प्यारे नाजरीन की खिदमत में भी सलाम अर्ज करता हूँ। और सुबह सवेरे एक बड़े मजे की बात आपकी खिदमत में लेके आया। किसी बुजुर्ग शख्सियत ने कहा है कि आप जो करते हैं उसके रिस्पॉन्सिबल हैं, उसके जिम्मेदार हैं, लेकिन वो कहते हैं कि आप जो सोचते हैं आप उसके जिम्मेदार नहीं। आप ये समझते हैं कि आप जो सोचते हैं आप उसके जिम्मेदार नहीं हैं। और वो कहते हैं कि इत्तफाकन जहां पर आपकी जिम्मेदारी, आपको जिम्मेदारी लेनी है, जहां पर आपको सोचना है, वो वही जगह है जहां पर आप एक काम करने के बारे में सोच रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप एक बुरे काम के बारे में सोचते हैं लेकिन वो काम करते नहीं, तो हम मामूलन ये सोचते हैं कि जी हमने कोई बुरा नहीं किया। तो वो कहते हैं कि ये जहां पर आपकी सोच शुरू होती है वहां पर भी जिम्मेदारी का एहसास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहीं से तमाम जो
फसाद
जो है वो वहीं से शुरू होती है। अगर आपने अपनी फिक्र को सही कर लिया, मुस्बत फिक्री की तरफ, और जो है सही डायरेक्शन जिस रास्ते पे चलना है उस तरफ चला दिया, तो आपकी जिंदगी जो है वो ठीक रहेगी।
जी, ये आपने बहुत अच्छी बात की नाजरीन। हमारे सबसे पहले जो हमें करना चाहिए यही है कि हमें अपनी फिक्र, अपनी सोच को दुरुस्त करना चाहिए ताकि हमारे आमाल, हमारे काम जो हम अंजाम दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, वो सही हो। हमारी सोच सही हो सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है हमारी। ये बड़ा खूबसूरत जो भी आपने
बिल्कुल
बताया,
बहुत बड़ी अच्छी बात की। तभी तो कहा जाता है कि बुजुर्गों के उनके जो तजर्बा है उनकी बातों जी उनका इस्तेमाल किया जाए, उसका जो है उनके तजुर्बे का इस्तेमाल किया जाए। और बहरहाल यह है कि बहुत अहम नुकता है, क्योंकि
एक बात मैं आपकी बात में इजाफा करती चलूँ, हम नौजवानों की जिम्मेदारी भी एक ही है, बनती है कि हम अपने गुज़श्ता, जो हमारे बुजुर्ग गुजर चुके हैं, जो आलिम हैं, जो भी हैं, जो हमसे उनका तजुर्बा भी ज्यादा था, जिंदगी ज्यादा देखी हमसे, उनकी बातों पर अमल तो चले ठीक है, लेकिन उनकी बातों को सुनना, थोड़ा समझना, थोड़ा उसके बारे में जानकारी करना बहुत जरूरी है।
थोड़ा
आपका
सा
क्या
वक्त
ख्याल है?
देना उनकी
ये एक
बातों
नौजवान
को,
नस्ल की मेरी नजर में एक छोटी सी जिम्मेदारी बनती है इसका।
ठीक है,
आपका क्या ख्याल है इस बारे
बिल्कुल
में?
सही आपने बात की। यही अक्सर आजकल जो एक मसला पेश आता है वो ये आता है कि शायद एक जवान के पास, एक नौजवान के पास वक्त ना हो। लेकिन मेरे ख्याल में अगर वो वक्त, अक्सर लोग बैठते हैं अपने बुजुर्गों के पास, उनकी बातें सुनते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। कुछ शायद थोड़ी सी एक तादाद लोग हैं जो शायद ये समझते हैं कि अगर अगर हम इनकी बातें सुनेंगे या इनके पास बैठेंगे तो शायद जो है इसराफ हो रहा है वक्त का, अहमियत नहीं देते। लेकिन मेरी उनको ये उनसे जो है दरख्वास्त है कि अगर 5 मिनट उनकी बातें बैठ के सुने तो आपको मजा आएगा, फिर आपको पता चलेगा। क्योंकि जब तक आप एक बंदे के पास बैठेंगे नहीं, एक चीज को देखेंगे नहीं, उसको परखेंगे नहीं, उसके बारे में आपको पता ही नहीं है, और हम जो है एक राय बना लेते हैं, एक जो है हमारी फिक्र बन जाती है कि ये चीज फायदेमंद नहीं है, ये ठीक नहीं है। एक मौका तो दें,
जी
बैठे
मौका जरूर
सुने
दें,
देखें
मैं ये
क्या होता
बोलूँ
है।
मौका दें, और अगर मौका दे रहे हैं उसके बाद आप बैठ कर उसको तहकीक करें, जानकारी करें। इतने वसाइल हमारे पास है, इंटरनेट्स हैं, किताबें हैं, बहुत सी चीज़ें हमें ऐसी मिलती हैं। आप उनकी बातों को सुनिए, उसके बारे में जानिए, परखिए, और देखिए इस तरह हमारी जिंदगी कितनी संवर सकती है। ये हम नौजवान नस्ल की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जी
सही जी।
तो फिर मैं
बहरहाल
और
मैं सिर्फ ये और भी अपने नाजरीन को कहता चलूं वो ये है कि हमारे प्यारे प्यारे जो नाजरीन हैं उनके उनकी शमूलियत के बगैर, उनकी शिरकत के बगैर प्रोग्राम में बिल्कुल मजा नहीं आता। तो आप ईमेल्स के जरिए, जिस रास्ते के जरिए भी आप हमारे साथ रब्ता करना चाहते हैं, हमने सारे दरवाजे जो हैं खोल के रखे हुए। और जैसे कि
यहां से
बहरहाल
चलते हैं, अभी छोटा सा ब्रेक लेते हैं
बिल्कुल
फौरन
जी
जी, और फिर नाजिन की खिदमत में हाजिर होते हैं। जी नाजरीन, आपको फिर से एक बार खुश आमदेद कहते हैं। नाजरीन, आपने देख लिया नंबर्स, ईमेल्स, तमाम रस्ते जिस तरह आप हमसे रابطے में रह सकते हैं, तो आप रابطہ जरूर कीजिएगा। जिस तरह खोरम भाई ने भी फरमाया, आपके बगैर, आपके रابطے के बगैर, आपके ईमेल्स के बगैर हमारा प्रोग्राम कुछ अधूरा अधूरा सा है।
अच्छा, एक बात और मैं अपनी नाजरीन की खिदमत में पेश करना चाहूंगा। एक और बुजुर्ग शख्स ने बड़ी खूबसूरत बात की और उन्होंने कहा कि अगर आप इस लिहाज से फिक्रमंद हैं कि आपका जो फ्यूचर है, जो आने वाला वक्त है, आपके बच्चों का जमाना जो होगा, उसके बारे में अगर आप फिक्रमंद हैं और आप अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हैं, तो आज से ही अपने बच्चों की अच्छी परवरिश के बारे में सोचिए और अपने बच्चों की जो परवरिश है उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह पूरी कीजिए।
जी, ये आ गई बात वालिदैन की जिम्मेदारी की, कि उन पे एक जिम्मेदारी बनती है कि हमारे बच्चों की जो आज की परवरिश है, जो कि हमारे बच्चे हमारा कल का, यानी आने वाला कल है, आइंदा है, हमारे मुल्क का, हमारे इस दुनिया का, इस जहान का हमारा वो आने वाला कल है। तो ये बहुत अच्छी बात आपने की कि वालिदैन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है परवरिश के अंदर।
बिल्कुल सही बात।
जी, वैसे खुर्रम, आज का हमारा मौजू और मेहमान को आप मुतारिफ कराएंगे?
जी बिल्कुल, जरूर करवा देते हैं आप अगर इजाजत दें।
जी जरूर।
जी, हमारे साथ जो है स्टूडियो में मौजूद होंगी कुछ मिनट्स के बाद डॉक्टर ज़ैनब मेहदी, और हम जो है उनसे बात करेंगे सीपीआर के सिलसिले में। सीपीआर ये वो चीज़ है जो इमरजेंसी में शोबे हादसात में बहुत अहमियत रखती है, जिसमें हम अगर एक शख्स का दिल जो है वो धड़कना रुक जाए या उसकी सांसें रुक जाएं, तो उसमें जो है उस शख्स को सीपीआर दिया जाता है, जो अक्सर हम लोग फिल्मों वगैरह में भी देखते हैं कि दिल के ऊपर जो है दोनों हाथ रख के और उसको जो है प्रेशर एक खास तरीके से दिया जाता है। बहरहाल इतना इल्म तो है हम सबके पास, लेकिन जो सही में सीपीआर का तरीका क्या है वो डॉक्टर ज़ैनब मेहदी हमें बताएंगे।
जी, बहुत शुक्रिया। फिर हम एक काम करते हैं, नाज़रीन चलते हैं हिंद की खूबसूरत सी तारीखी रिपोर्ट देखते हैं, और उसके बाद ज़ैनब मेहदी साहिबा हमारे साथ होंगे। जी,
मैं आसिफ खान जो एक मुसाफिर है, दिल्ली से सफर करते हुए जयपुर आ पहुंचा है आप लोगों के लिए, जयपुर का जायका आप तक पहुंचाने के लिए। मैं जयपुर आ चुका हूं, मुख्तलिफ इलाकों में जो है बाजारों में घूम रहा हूं, इमारतों को देख रहा हूं, पुरानी इमारतों को देख रहा हूं और आप तक उसका जायका पहुंचा रहा हूं। इसी तरीके से मेरे पीछे जो है एक इमारत है जिसका नाम है हवा महल। ये बहुत पुरानी इमारत है, 1799 में राजा प्रताप सिंह ने इसको बनाया था, जिसमें जो है 253 जो है झरोके हैं, छोटी छोटी खिड़कियां हैं, जिनमें से जो है जो अंदर रानियां, जो हरम हुआ करता था, हरम ध्यान दीजिएगा, जो हरम में जो है रानियां जो हुआ करती थी, उनको बाहर की दुनिया देखना, मतलब बाहर जो है आना उनको जो है पाबंदी थी, उनको इजाज़त नहीं थी कि वो बाहर जो है बाज़ारों में आना जाना शुरू करें, बट वो जो है अंदर इन्हीं खिड़कियों से, जो पीछे आप खिड़कियां देख रहे हैं, इनकी जो टोटल जो तादाद है वो 253 हैं, और उन्हीं खिड़कियों से वो जो है बाहर की दुनिया को देखा करती थी, नीचे जाने वाला जो ट्रैफिक हुआ करता था उसको निहारा करती थी। मतलब ये था कि उनकी ज़िंदगी जो है पूरी तरीके से जो है कैद हो चुकी थी इस महल के अंदर, बस ये खिड़कियां ही एक सहारा थी जिनकी वजह से जो है वो बाहर की ज़िंदगी से रूबरू होती थी। राजपूती, राजपुताना एक आर्किटेक्चर जो है बहुत पुराना आर्किटेक्चर है हिंदुस्तान के अंदर, मुग़लों से पहले का है। यहाँ राजस्थान का एक अपना ही अलग जायका है, अपना अलग ही आर्किटेक्चर है, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो है अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वो पाई जाती हैं, तो वहाँ से जो है पत्थरों को तराज के तोड़ के लाना जो बहुत बड़ी बात नहीं थी उस दौरान, क्योंकि जो है अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली में जो है अगर बहुत पुरानी इमारतें जो बनी हैं वहाँ जो है पहाड़ों से पत्थर लाना, जो है लाद के लाना थोड़ा सा मुश्किल था, बट खुद राजस्थान जो है बहुत सारे पहाड़ हैं, पहाड़ों पर से पत्थर ला के जो है उनको तोड़ कर तराज के जो है महल बनाना या इस तरह की कुछ इमारतें बनाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं थी, बट इसको जो है बनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आई, क्योंकि ये इसमें जो है कहते हैं कि राजा उदय प्रताप सिंह, राजा प्रताप सिंह ने इसको 1799 में बनाया, और इसका नाम जो है हवा महल रखा और बहुत कम वक्त में इसको जो है तामीर कराया। इसके अंदर जितना भी डिजाइन है, जैसे छोटे छोटे दरवाजे इसमें जो है हरे रंग के दिख रहे हैं, उसमें अंदर शीशों का जो भी काम है वो सारा ओरिजिनल काम है, मुस्तकिल तब से जो है अभी तक कंटिन्यू चल रहा है। साल भर में हजारों जो टूरिस्ट हैं वो लोग जो है इसको देखने के लिए आते हैं, हजारों नहीं, थोड़ा गलत हूं मैं, हजारों नहीं, लाखों की तादाद में लोग जो है इसको विजिट करने आते हैं, इस इमारत से रूबरू होने आते हैं। ये इमारत जयपुर में ख़ास मकाम रखती है, इसको हवा महल के नाम से जानते हैं। कभी आप इंटरनेट पर सर्च करना, आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। बाकी आप जब भी हिंदुस्तान आएँ, जब भी जयपुर आएँ, तो आप इसकी कोशिश करें कि आप हवा महल तक पहुँचें। ठीक है, इसमें अंदर जाना ऐसा इजाज़त नहीं है किसी के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि जो यहाँ का शाही ख़ानदान है वो आज भी जो है जयपुर में रह रहा है, तो उनकी कुछ ना कुछ अभी भी चलती है। तो लोग इस नीचे से ही जो है इसको, इसका नज़ारा जो है देखते हैं, इससे जो है रूबरू होते हैं, इसका मुआयना करते हैं। यहाँ पे इसी सड़क पर पीछे की तरफ मैं दिखाना चाहूँगा, पीछे आपके बैक साइड में अगर मैं बोलूँ, यहाँ पीछे जो है ट्रैफिक रुकता है इस तरफ, और लोग जो है यहीं से रुक कर जो है इसको देखा करते हैं, मतलब वो यहीं से जो है इसको निहारा करते हैं, इसका लुत्फ उठाया करते हैं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत इमारत है, मतलब अगर एक बार अगर इसको देखना शुरू कर दें हम, तो इसको हम सिर्फ देखते रहेंगे टकटकी लगाए हुए, जैसा अब मैं करने वाला हूँ। मैं सिर्फ अब इसको देखने वाला हूँ अच्छी तरीके से, इसको अपनी आँखों में भरने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको अपनी आँखों में भर के, आँखों के कैमरे में कैद करके इसको मैं अपने दिल्ली शहर लेके जाऊँ। आसिफ खान जो एक मुसाफिर है, दिल्ली से जो है तशरीफ लेके आया है जयपुर, और आपको जो है मुख्तलिफ किस्मों के जो है यहाँ के जयपुर के जायके जो है आप तक पहुँचा रहा है। एक जायका मेरे पीछे है, बिल्कुल बहुत अच्छा शानदार जायका है। तारीखी तौर के एतबार से अगर इसको देखा जाए तो 1799 में इसको जो है हवा महल को बनाया गया था। सिर्फ हवा महल की बात नहीं है, हम इस वक्त जयपुर के पुराने जयपुर में है, जैसा दिल्ली में है, दिल्ली में ओल्ड दिल्ली है, उसी तरीके से जयपुर में जो है पुराना जयपुर है, जिसको पिंक सिटी, गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। जयपुर को हिंदुस्तान का पेरिस भी कहा जाता है, ये ध्यान देने वाली बात है। गुलाबी शहर इसलिए कहा जाता है कि एक बार वायसराय जो इंग्लैंड के हैं, इंग्लिस्तान के, वो जब जयपुर तशरीफ ला रहे थे तो जयपुर के शाही खानदान ने जो है पूरा का पूरा शहर गुलाबी रंग से जो है सजा दिया था, गुलाबी रंग से जो है पूरा उसको पेंट कर दिया था, सिर्फ और सिर्फ उनके इस्तकबाल करने के लिए। आज तक मुस्तकिल जो है बहुत सारी इमारतें, मतलब ज़्यादातर जितनी भी इमारतें हैं वो पिंक हैं, इसलिए इसको गुलाबी शहर भी कहा जाता है। तो इस गुलाबी शहर के कुछ और ख़ास इमारतों से मैं इंशाल्लाह मैं आपको रूबरू कराऊंगा। अभी फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मैं एक मुसाफिर हूँ, फिर मिलूँगा आपको किसी और मकाम पर। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।
नाज़रीन, उम्मीदवार है कि आपको आसिफ साहब जो एक मुसाफिर हैं उनकी रिपोर्ट पसंद आई होगी, जो थी जयपुर गुलाबी शहर के बारे में। वक्त को ज़ाया किए बगैर चलते हैं खुर्रम भाई के पास, क्योंकि हमारे मौजूद मेहमान तशरीफ ला चुके हैं। जी खुर्रम भाई
जी, बहुत शुक्रिया। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं नाज़रीन, हमारे साथ डॉक्टर ज़ैनब मेहती स्टूडियो में मौजूद हैं, और जैसे कि मैंने कहा कि CPR के बारे में डॉक्टर साहिबा हमारे से गुफ्तगू करेंगी, जो कि एक बहुत अहम मौजू है। और बहरहाल हम, जैसे कि आप लोगों को याद होगा कि डॉक्टर ज़ैनब मेहती के साथ हम जो है डूबने वगैरह की बातें कर रहे थे कि डूबने के सिलसिले में जो है क्या किया जा सकता है, उस चलते हैं, क्योंकि अक्सर औकात डूबने की हालत में भी सांसें रुक जाती हैं और कभी कभार दिल की धड़कन रुक जाती है, वहां से ही शुरू करते हैं कि उस मौके पर कैसे, क्या कंडीशनों के CPR किया जाए।
आप देख लें किसी भी हालत में अगर आप जब जो मरीज है यानी जो मजरूह है जिसको आपने ढूंढा है आप पहुंचे हैं उस और वो पहले नफर हैं आप यानी पहले आदमी है जो पहुंचता है उसके नजदीक, तो जो भी पहला बंदा पहुंचता है उसके नजदीक उसका ये वजीफा है कि वो CPR जो है वो शुरू करे किसी भी हालत में, जहां भी आपको लगता है कि मरीज जो है वो एक इंसान जो है वो रोड के किनारे है, घर के अंदर है, डूबा हुआ है यानी डूबने से निकाला गया है या जलने से बाहर लाया गया है, एक्सीडेंट के जो सहने उससे बाहर लाया गया है, इन सारी हालतों में यानी।
अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये कहा जाता है कि जब आप एक जो शख्स डूब गया है उसको जो बाहर निकालते हैं तो बाहर निकालने के बाद कहाँ पर उसको लिटाया जाए, वहीं पर मसला गया स्विमिंग पूल है या अगर दरिया समंदर वगैरह के उसके पास तो वहीं पर उसको जिस तरह की जगह हो वहां पर लिटा दें, शुरू कर दें CPR?
बहुत अच्छा सवाल ये आपने किया क्योंकि सबसे पहले पिछले प्रोग्राम्स में भी बात की थी हम लोगों ने इस बारे में, वो ये है कि सबसे पहले आपकी सेफ्टी क्योंकि आप बचाने वाले हैं, जो दूसरा फर्द जो है जो पड़ा हुआ है जमीन पे वो जाग नहीं रहा है, होश नहीं है उसको कि वो किस हालत में
है।
तो आपकी दो दो सबसे ज्यादा जो आपकी अहमियत वाले जो वजीफे हैं आपके वो सबसे पहले ये हैं कि आप उसको अपने आप को बचाएं ताकि उसको बचा सकें। तो जैसे आप देख लें ये जुमला इसलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि आप सोचें एक जगह है, एक घर है, कोई जल रहा है, एक बिल्डिंग में आग लग सकती है। डूबने के केस में आप देख लें कि लोग जैसे पहले भी बात कर चुके हैं हम लोग, जब तक आपको तैरना नहीं आता है आप पानी में ना कूदें किसी को बचाने के लिए, इसलिए कि आप खुद तो बच नहीं पाएंगे और साथ साथ वो भी खत्म हो जाएगा, उससे भी जो उसका चांस है बचने का वो ले लिया आपने। तो सबसे पहले किसी भी जगह पे अगर आप हैं तो उस जगह की सेफ्टी जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, सबसे ज्यादा अहमियत वाली चीज है। तो मरीज को जैसे आप कह रहे डूबने का आपने सवाल किया और पिछले हफ्तों में भी हम लोग इसी बारे में बात कर रहे थे, सबसे पहले आप मरीज को, आपने निकाला या किसी और ने निकाला, सबसे पहले अगर आपको तैरना आता है तब कूदें पानी में, मरीज को आप निकाले बाहर और पानी की उस हद से दूर ले जाएं जहां इस बात का खतरा है कि वो दोबारा जो है वो पलट सकता है पानी के अंदर किसी भी तरह, या फिर अगर आप कह लें जलने से मुतालिक हो तो जलने में आप उस बिल्डिंग से या उस कमरे से या उस जगह से जहां पे आप कह लें शोले हैं आग के, या फिर गैस की महक है, या फिर ऐसे वसाइल हैं आपके आसपास जो आसानी से आग पकड़ सकते हैं, तो उस जगह से आप पहले खुद के बारे में सोचें कि आप निकल सकते हैं, उसके बाद आप इस बारे में फिक्र करें कि मरीज को निकाल सकते हैं आप उस आदमी को या नहीं, उसको बाहर निकालें और उसके बाद सबसे पहले जो है आप इमदाद की तलब करेंगे और फिर शुरू करेंगे।
अच्छा डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि जो अगर आपका कोई नजदीकी जानने वाला रिश्तेदार वगैरह है तो आप उसको जो है उसकी मदद ना करें अगर दो तीन बंदे मौजूद हैं किसी, क्योंकि कहा जाता है कि एहसासात का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है, और यहां तक कि यह भी कहा जाता है कि अगर डॉक्टर कोई अगर सर्जरी कर रहा है और वो आपका जानने वाला रिश्तेदार है तो उसको जो है सर्जरी ना करने दीजिए, तो CPR के सिलसिले में भी ऐसा ये चीज देखने की जरूरत है।
CPR क्योंकि आप कह लें ऐसी जगहों पे ज्यादातर पेश आता है इंसान के लिए जब आप सिर्फ अकेले एक फर्द हैं,
ठीक है,
और खुदा ना खास्ता एक या एक से ज्यादा लोग जो हैं वो आपके सामने जमीन पे हैं, लेकिन अगर इस बात का इम्कान हो कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसा हादसा पेश आया है जिसमें कई सारे लोग हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं और फिर उसमें आपके जानने वाले भी हैं, तो ये बेहतरीन काम यही होगा कि बजाय इसके कि आप अपने जानने वाले की तरफ जाएं आप उसकी तरफ जाएं जो आपके लिए अजनबी है,
ठीक है।
जिस तरह से आपने भी कहा आपका जो जजमेंट है जो आपकी कुदरत है इस बात की, ये जिम्मेदारी जो मौजू आपका चल रहा है, यानी आप देखें जब आप दुरुस्त है कि आप एहसास से जिम्मेदारी करेंगे उस फर्द की तरफ जो आपके लिए आशना है बनिस्बत किसी के जो अजनबी है आपके लिए, लेकिन वहां पे आपका जो जजमेंट है वो डिवाइड हो जाता है, आप ज्यादातर इस बारे में परेशान है कि उसके फेस पे खराश आई या वो आप जागेगा या नहीं, बजाय इसके कि आप उसको बार बार हिला के इस बात की कोशिश करें कि वो जागेगा या नहीं, यहाँ पे आपको ये फैसला करना चाहिए कि आप फौरन CPR शुरू
बड़े आराम से सुकून से और मसन जो है
यानी सेकंड्स के अंदर सही जजमेंट लेना
कर लेना जो है बहुत जरूरी,
वो बहुत जरूरी।
अच्छा डॉक्टर साहब, चलते हैं थोड़ा सा आगे और बात करते हैं कि एक होता है सांस रुकना, एक होता है दिल की धड़कन रुकना, इनमें क्या फर्क क्या है, एक साथ दोनों रुक जाएंगे यानी अगर दिल की धड़कन रुकी तो सांस भी रुक जाएगा, या पहले सांस रुक रहा है फिर दिल की, ये इसके बारे में थोड़ा सा।
ये भी अच्छा सवाल आपने किया, खुद CPR जो एब्रीविएशन इस्तेमाल होती है जो इस रोज का मौजू भी हम लोगों का, उसका आप अगर फुल फॉर्म आप कह लें अगर बताया जाए तो उसको कहते हैं कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन,
ठीक है।
कार्डियो मेडिकल टर्म है दिल के लिए,
ठीक है।
पल्मोनरी मेडिकल टर्म है आपकी सिस्टम में तनफुस के लिए,
जो
सांस
फेफड़े,
लेने फेफड़ों के
ठीक
लिए, फेफड़े और आपका जो पाइप है जिससे हवा जा रही
सांस
है
की नाली
नीचे, सांस की नाली, ये सारी चीजों को शामिल होता
सही
है। रिससिटेशन इंग्लिश का वो जुमला है जो कहता है कि आप पलटाएंगे किसी को वापस। तो आप दिल का हो या नहीं, दिल आपका अरेस्ट कर गया है, कार्डियक अरेस्ट में थे आप, या फिर आपको कोई ऐसा मौजू पेश आया है जैसे जी की सांस की जो आने और जाने का रास्ता है वो बंद हो गया है, इन दोनों हालतों में है जो काम किया जाता है उसको कहते हैं सीपीआर।
ठीक है,
फर्क नहीं
जी,
करता
है। इसका मतलब ये हो गया कि हम दोनों दोनों चीजों को साथ लेके चल रहे हैं, ये कहना कि सिर्फ दिल को हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं ये सही नहीं,
नहीं, नहीं।
हो सकता है कभी कभार ऐसा हो कि दिल आपका धड़क रहा है लेकिन सांस में
सांस
मसला हो गया,
तब
भी जो है सीपीआर वहां पर लागू है। डॉक्टर साहब, गुफ्तगु को हम जारी रखेंगे, यहाँ पर चलते हैं रुबाब के पास, देखते हैं रुबाब के पास हमारे लिए क्या।
बहुत शुक्रिया खुर्रम जी। नाजरीन, चलते हैं साथ मिलकर एक खूबसूरत सी मौसीकी मुलायजा फरमाते हैं और फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। जी नाजरीन, आपने खूबसूरत सी दस्तकारी के मनाजर मुलाहिजा फरमाए, हम फौरन चलते हैं खुर्रम भाई के पास और जैनब मेदी के पास। वैसे डॉक्टर साहिबा, मेरा एक आपसे सवाल है। हमारे पास से कल ईमेल आई थी, शाहिद साहब ने लाहौर से हमें ईमेल भेजी है। इनका सवाल कुछ इस तरह था कि सीपीआर अगर घर के अंदर अचानक किसी को लाइक खुदा ना खास्ता लाइक बेहोश हो जाता है, अब एक तो वो कैसे मालूम करें कि वो दिल की वजह से हुआ है या सांस रुकने की वजह से, और चंद आसान से मराहिल जिनको घर में अंजाम दे सकते हैं, उस बंदे की जान बचा सकते हैं
जान बचाने के लिए। जी बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पे आप पहले भी जिस तरह से कह चुके हैं हम लोग, एक तो क्योंकि आपने कहा कि आग नहीं है, कोई डूबा नहीं है, तो एक सिंपल सा सिनेरियो है, यानी कई जगहों पे भी पेश आता है कि कोई बुजुर्ग अफराद हैं घर के अंदर और एक बार की आप देखते हैं कि गश खा के जो है वो गिर जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है जगाना, यानी इंसान को, यानी उसको हिला के, जो एक जुमला इस्तेमाल किया जाता है वो सबसे छोटा जो जिस बात का इम्कान है जुमला जो है उसको कहते हैं हे, यानी सबसे पहले जो भी जी आवाज लगाना है। आवाज लगाने से आप तीन चार चीजें जो है एक साथ चेक कर लेंगे। एक तो आप उसकी होशियारी के लेवल के बारे में जो है आप वहीं पे इंस्टेंटली जो है आप समझ जाएंगे जब आप जगाएंगे कि भाई ये गया या नहीं है अभी। उसके बाद जैसे ही आपने उस इंसान को जगाया, आपके आपको जवाब नहीं मिलता है, रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो यहाँ पे आप दूसरा काम जो करेंगे वो ये है कि कोई भी नंबर, जैसे यहाँ पे हम लोग
इमरजेंसी नंबर जो होते हैं
जी, या फिर मसलन फायर के लिए यहाँ पे 125 कहते हैं, तो आप उस इमरजेंसी नंबर को डायल करेंगे सबसे पहले। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा आप कह रहे हैं लॉजिकल काम है, इसलिए कि एक इंसान, आप कह रहे हैं एक हट्टा कट्टा जवान इंसान भी जो है वो दो मिनट से ज्यादा बैक टू बैक, यानी एक के पीछे एक सीपीआर करने की कुदरत नहीं रखता है। पर अक्स उस चीज के जो पिक्चरों में दिखाया जाता है कि एक सादा हाथ जो है वो रखा हुआ है और वो हिल रहा है अपने लिए अलग बगैर किसी रिदम के, सीपीआर एक ऐसी चीज है जिसको बहुत ज्यादा एनर्जी की भी जरूरत होती है। तो सबसे पहले आप जब आपको ये लग गया कि यानी जो खतरा है जो वाकई है, आप सबसे पहले दूसरा काम जो आपका दूसरा स्टेप है वो आप मदद की तलब करेंगे, उस नंबर पे फोन करेंगे या कोई और अगर आपके बगल में खड़ा हुआ है तो उसको भेजेंगे अस्पताल की तरफ। और इसके बाद फिर जो है आप खुद जिसको कहा जाता है मैनुअल सीपीआर, यानी हाथों का इस्तेमाल करते हुए आप वो रिससिटेशन का जो प्रोसेस है वो शुरू करेंगे। कि यहाँ पे अगर एक एक करके आप अगर कहें तो यहीं पे तौजीह दे दीजिए चलें। कहा जाता है कि पहले ये कहा जाता था कि आप अगर एक मिनट का टाइम अगर अपने जहन में रखें तो एक 100 कंप्रेशंस पर मिनट, यहाँ पे अंग्रेजी के अलावा उर्दू का इस्तेमाल नहीं कर सकता आदमी, यानी आप कह लें जो चीज़ आप लोगों ने देखी भी होगी फिल्मों वगैरह में लोग देखते हैं, तो 100 कंप्रेशन यानी 100 बार
जो है प्रेशर,
100 बार प्रेशर देना चेस्ट पे हर मिनट के अंदर जो है वो कम से कम, कम से
एक मिनट के अंदर 100 बार जो है,
एक मिनट के अंदर यानी आप इस स्पीड से देंगे।
अच्छा,
एक मिनट के अंदर ऐसी 5 साइकिल्स होंगी। किस तरह की साइकिल्स? क्योंकि दिल के बारे में भी बात हो रही है और क्योंकि आप कह लें आपके जो फेफड़े हैं उनके बारे में भी बात हो रही है, क्योंकि दो चीजें जो इंसान को जिंदा रखती हैं, यानी आप होशियारी को अगर रख दें साइड में, दिमाग का इस्तेमाल यानी दिमाग को आप अगर साइड में रखें, तो एक दिल और एक फेफड़ा है जो इंसान के वजूद
चला रहा है।
तो यहाँ पे आप सबसे पहले दिल जो है वो प्रायोरिटी में, दिल जो है उसकी अहमियत सबसे पहले ज्यादा है,
ठीक है,
क्यों? क्योंकि वो सर्कुलेशन बना रहा है आपके लिए,
खून नहीं पहुंचेगा तो वैसे
खून नहीं पहुंचेगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो सब कुछ रुक जाता है। तो सबसे पहले जो ये इसलिए ज्यादा मैं इस बात पे इसरार कर रही हूँ क्योंकि पहले कहा जाता था ए बी सी,
ठीक है,
यानी सबसे पहले आप जो फर्द है, खैर वो जो सुनारियो जो अली भाई ने हम लोगों के लाहौर से पूछा है उसमें ऐसी चीज नहीं है, क्योंकि आपके सामने जो है वो फर्द गिरा और आपको पता है कि उसके मुंह में कोई चीज फंसी नहीं है, जला नहीं
है।
सबसे पहले ये कहा जाता था कि आप एयरवे या जो सांस के आने और जाने की जगह है उसको आप जो है मरीज के अंदर देखें और क्लियर करें, लेकिन अब ये नहीं कहा जाता है।
अच्छा।
अभी कहा जाता है सबसे पहले आप सी से शुरू करें, यानी बजाय इसके एक ए बी और सी हो, सी से आप कॉम्प्रेशन की तरफ आएंगे सबसे पहले।
अच्छा।
यानी आप सर्कुलेशन को बचाना चाहते हैं।
अच्छा।
तो सबसे पहला काम आपने जब उसको जगाया, पहला स्टेप, दूसरा आपने कॉल किया, तीसरा आप चेस्ट पे मरीज की पहुंचेंगे और चेस्ट के एरिया में दो निम्पल्स के बीच का जो पोर्शन हो,
ठीक है,
उसमें आप अपनी हाथों की हथेलियों से
ये जो दो हमारे सीने हैं उसके दरमियान की बात करें, ठीक, यहाँ पर
तकरीबन कहा जाता है
जो हड्डी यहाँ पर हमें एहसास होती है,
जी,
ठीक
जी,
है,
यानी आप कह लें डॉक्टर्स के लिए दूसरी तरह से, यानी आप कह लें डिस्क्राइब किया जाता है इन चीजों की आप कौन सा जो है वो दो रीढ़ यानी दो पसलियों के बीच की कौन सी जगह को आप इस्तेमाल करें और ये, लेकिन क्योंकि ले मैन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, आम बंदा, तो आप अगर प्रोपोर्शनेट लेने यानी ऐसी हुदूदी अगर आप बात करना चाहें तो दो निपल्स के बीच के स्पेस को आप लेके और उसके बीच में आप जो है वो कॉम्प्रेशन की जगह
शुरू
की होती है।
डॉक्टर साहब इसको जारी रखेंगे और मैं जो है कोशिश करूंगा कि वक्त हमारे पास हो ताकि हम इस मौजू को खत्म कर सकें। चलते हैं रुआब के पास, रुआब के पास हमारी कुछ बातें।
बहुत शुक्रिया खुर्रम, आज मैं आपको मजे की बात बताना चाह रही हूँ, वो कुछ ऐसी है कि हमने अक्सर देखा है कि दवाइयों में हम केमिकल्स का इस्तेमाल बहुत करते हैं, लेकिन अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन ने कुछ ऐसी चीजें निकाली हैं कि हम इन दवाइयों में असली कुदरती तौर पर जो खुदा ने हमको दी है नेचर उसका इस्तेमाल कर सके। जी नाजरीन, आपको मैं आज मजे की बात ये बताने वाली हूँ कि हमारे कुदरत में भी कितनी कितनी दवाइयां हैं जिनसे हम काफी काफी बीमारियों से बच सकते हैं। सबसे पहली चीज आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, जी ये देखिए, ये है एक गाजर, कटा हुआ स्लाइस है गाजर का, लेकिन अगर आपको गौर से देखिए तो इसकी शबाहत कुछ हमारे आंखों से मिलती है। अब इसकी खसूसियात डॉक्टर्स ने कुछ इस तरह बताई है हमें कि एक गाजर खाने से आपकी आंख जो खून की आंखों का जो जरियान है वो तेज होता है और आपकी आंखें काफी हद तक बेहतर देखना शुरू रहती है। और अगर आपकी आंखें वीक हैं, घर में आपकी आंखें ज़ईफ़ हैं, तो आप इसका बहुत इस्तेमाल कीजिए, इसके जूस का इस्तेमाल कीजिए, आपकी आंखें बहुत बेहतर हो जाएंगी। अब इसके जो एक्सट्रैक्ट्स हैं या इसके जो आप बोले इसका नचोड़ आजकल दवाइयों में इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। जी दूसरा जो हमारे पास है टमाटर, घर में इस्तेमाल होता है, सलाद्स में, खानों में बहुत इस्तेमाल होता है। अब आप इसकी शबाहत देखिए, इसमें चार हिस्से बनाए गए हैं, हमारे दिल के भी चार हिस्से हैं। डॉक्टर्स ने इसमें इसके बारे में ये कहा गया है कि ये हमारे दिल के लिए एक प्योर गजा है, यानी एक खालिज गजा हमारे दिल के लिए और हमारे खून के लिए है। हमारे खून का जरियान जितना भी अच्छा और साफ होगा हमारा दिल उतना अच्छा काम करेगा। इसका नचोड़ भी आजकल की दवाइयों में इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। और फिर हमारे पास आता है जी ये देखिए, और एक और मजे की बात है हमारे पास यहाँ पे है अखरोट। अखरोट कुछ शबाहत रखता है इंसान की जहन से, इंसान के मक्स से। इसके अंदर की पाई गई चर्बी का इस्तेमाल भी दवाइयों में शुरू हो चुका है। कहते हैं कि इसके अंदर की पाई जो चर्बी है इसमें वो हमारे जहन के लिए, हमारे मक्स के लिए, हमारे हाफिजे के लिए बहुत अच्छी है। इसका भी इस्तेमाल कीजिए। अल्जाइमर की काफ़ी बीमारियों की जो दवाइयाँ हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और फिर हमारे पास आखिरी नहीं बल्कि एक और चीज़ ये है, बीन्स, जो इसको लूबिया कहते हैं, सब्ज लूबिया जो उसकी कच्ची फॉर्म होती है, ये है आप देख रहे हैं, इसकी शबाहत हमारे गुर्दों से है। जी नाजी, हमारे गुर्दों से जो इसकी शबाहत है, ये हमारे गुर्दों के लिए खास गजा है। इसमें ये हमारे गुर्दों की सफाई के लिए अंदर काफी अच्छा काम करता है और जो पत्थर या पथरी जो हमको हो जाती है उससे हमें बचाता है। नाजरीन ये तो थी आज की एक पहली खबर, चलते हैं दूसरी खबर के लिए, पर एक कहते हैं छोटा सा ब्रेक। जी नाजरीन आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। कहते हैं कि दिन का एक सेब खाने से डॉक्टर आपसे दूर दूर और बहुत दूर होता चला जाता है। जी इस बात में कितनी सच्चाई है मैं आपको बताती हूँ। ये तो है सेब और इसके पीछे सेब का सिरका, सुना होगा आपने, घर में भी इसका इस्तेमाल होता रहता है, वैसे ईरान में तो बहुत भी इसका इस्तेमाल होता है। अब इसकी मैं आपको बताती हूँ खासियत क्या है। सेब के सिरके के बारे में कहा गया है जी, ये आपके जो दर्द है जोड़ों के दर्द के लिए बहुत मुफीद है, आपके स्किन के लिए, आपकी जो जिल्द है सूरत की उसमें एक्नी हो जाती है, अगर खवातीन या मर्द हजरात का इस्तेमाल करें आप उससे भी निजात पा सकते हैं। आपकी जो एसिडिटी आपको हो जाती है या सीने की जलन उसमें भी इसका काफ़ी अच्छा और काफ़ी मुफीद इस्तेमाल हो सकता है। फिर कहा जाता है एलर्जीज आपको जितनी है, काफी एलर्जीज आपकी जान छुड़ा सकता है, एंटी आपको कैंसर से भी बचा सकता है, यानी कैंसर अगर आपके जिस्म में अल्लाह ना करे यानी कभी इस तरह की कुछ इम्कानात होती हैं तो ये उसके प्रोसेस को भी बहुत बहुत कम कर देता है। जिन को हमेशा मेरी तरह नज़ला जुकाम का भी मसला रहता है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। इसका मसाज सर पे देने से आपकी खुश्की खत्म हो जाती है और बालों के अंदर बहुत बहुत चमक आती है। डायबिटीज पेशेंट अगर इसका दिन का एक चमचा पी लिया करें तो उनकी शुगर की लेवल या डायबिटिक पेशेंट्स में जो भी प्रॉब्लम होती है वो भी काफ़ी हद तक हल हो जाती है। और एक और तस्वीर भी आ जाए अगर जी, फिर कहते हैं कि आपका निज़ाम हाजमा है, अगर आपका निज़ाम हाजमा बहुत ज़यीफ है, आप खाना सही तरह हजम नहीं कर रहे, खाने के बाद भी इसका इस्तेमाल आपके खाने को हजम कर सकता है। अच्छा, एक भी काफ़ी मसला रहता है घरों में, ख़वातीन इस बात से बहुत नाराज़ रहती है, मर्द हजरात काम से जब वापस आते हैं इनके जुराबों की वजह से पाँव में बहुत बू आती है, उस बू का भी इलाज इससे हो सकता है। और फंगल इन्फेक्शन जितने भी आपको है ये उनका भी इलाज कर सकता है। इसका दिन में एक चम्मच सुबह और एक चम्मच रात को पीने से सर के दर्द की जो मसाइल है वो हल हो सकती हैं। और जिनको हाई कोलेस्ट्रॉल है उनका भी ये मसला हल कर सकता है। हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत बहुत मुफीद साबित है। निहार मुंह आप इसका एक चमचा ले लें तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। अगर किसी कीड़े ने, मच्छर ने, किसी भी इंसेक्ट ने, कीड़े मकोड़े ने आपको काट लिया, उस पर मलने से भी उसकी सूजन जो है उस जगह की सूजन ये काफ़ी हद तक कम कर सकता है। किडनी को आपके जो है आपके गुर्दों का है उसको भी ये बहुत साफ रखता है। साइनस इन्फेक्शन वाले जिनको है अगर इसको सूंघ लें या इसको इनहेल कर लें किस तरह तो इसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। जिनके गले में हमेशा खराश रहती है इससे गरारे करने से भी इनकी जो गले की खराश है दूर हो जाती है। और जिनको सूरत से जिनकी जिल्द जिस्म की जल गई है उनके लिए भी ये बहुत बहुत मुफीद साबित होता है। और आखिरी बात, आपका वजन कम करने के लिए भी ये बहुत मुफीद साबित होता है। चलते हैं खोरम भाई और डॉक्टर के पास, देखते हैं उनके पास और क्या कहने के लिए।
जी बहुत शुक्रिया, बहुत मुफीद बातें आप लेके आई रुबाब। डॉक्टर साहब वक्त महदूद और CPR का मौजू लंबा।
जी जहाँ तक हम लोगों ने बात की तो कहा गया कि 100 की स्पीड से जो है यदि आप उस स्पीड के साथ जिसे आप कह लें 100 पर मिनट की स्पीड से जो है आप कंप्रेशन देना शुरू करेंगे। यहाँ पे किस तरह से डिवाइड किया जाता है क्योंकि दिल और निज़ाम तनाफुस का मसला है तो यहाँ पे कहा जाता है कि आप हर एक मिनट के अंदर ऐसी 5 साइकिल्स हों तो कैसे आप डिवाइड करेंगे मिनट के अंदर, अगर आप 60 सेकंड में रखें 2 मिनट के अंदर तो आप यहाँ पे सबसे पहले 30 मरतबा जो है, अगर 2 लोग हैं तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप एक बंदा अगर होगा तो उसका थकने का इम्कान और उसकी कैफियत जो है वो कम होने का इम्कान बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है।
ठीक है, यानी वो सही तरह से ना कर पाए।
नहीं कर पाएगा क्योंकि आप कह लें खुद अपने आप में एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा काम है जो बहुत ज्यादा एनर्जी ले लेता है इंसान से अगर उस तरह से अंजाम ना हो जिस तरह फिल्मों में दिखाया जाता है।
जिस तरह करना है उसमें अगर करेंगे तो थकावट है।
जी यहाँ पे आप कह लें तो सबसे पहले आप 30 जो है वो चेस्ट कंप्रेशन देंगे, 30 मरतबा आप वो काम करेंगे और उसके बाद टाइम लेते हुए जो आप 2 मरतबा जो है वो जो बेहोश फर्द है इंसान है उसको आप सांस देंगे।
ठीक है,
30 और 2 का ये सिलसिला जो है तब तक चलता रहेगा उसी स्पीड से, यानी 100 पर मिनट की स्पीड से जो है वो 30 और 2 का सिलसिला आप चलाएंगे। अगर आप 2 लोग हैं तो 1 मरतबा जब आपने 30 और 2 का जो मरहला है आप तय कर गए हैं तो आप फिर आ जाएंगे पीछे बिला फासले जो है वो आपके बगल में जो इंसान खड़ा हुआ है वो जाएगा और चेस्ट कंप्रेशन को जो है वो शुरू करेगा। अगर 2 लोग हैं उस जगह पे तो आप बिल्कुल ये काम ना करें कि आप कहें नहीं मैंने फिलहाल संभाल रखा है तुम खड़े रहो, क्योंकि ऐसा भी पेश आता है कि लोग जो है वो फील करते हैं उस टाइम पे कि बहुत ज़्यादा एनर्जी उनके अंदर आ गई है और जो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि आपको शायद लगे कि जो आप चेस्ट कंप्रेशन दे रहे हैं इंसान के लिए वो मुफीद है लेकिन नहीं, आपकी जो थकन है वो आपको समझ नहीं आती, दिखाई नहीं दे रही है लेकिन इफेक्टिव नहीं है वो जो चेस्ट कंप्रेशन।
वक्त जो है हमारे पास बिल्कुल खत्म हो चुका है तो इंशाल्लाह जो है कोशिश करेंगे कि इस मौजू को जो है पूरी तरह जो है कंप्लीट किया जा सके। चलते हैं रुबाब के पास और देखते हैं रुबाब के पास हमारे लिए क्या है।
हमें कहा जा रहा है हमारे साथ एक कॉलर लाइन पर मौजूद है, अगर हमारे साथी बताएं कि हमारी कॉल कनेक्ट हो चुकी है या नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
जी कौन साहब बात कर रहे हैं और कहां से बात कर रहे हैं?
मैं मुश्ताक अहमद श्रीनगर कश्मीर से बोल रहा हूं।
जी बहुत बहुत खुश आमीद, उम्मीदवार आप खैर खैरियत से होंगे, क्या कहना चाहेंगे आज के बारे में आप?
ہاں یہ جو آپ نے موضوع انتخاب کیا ہے بہت ہی اچھا بہترین موضوع ہے احساس ذمہ داری. انسان کے اوپر جو ہے وہ اس کے اوپر بہت سارے حقوق پائے جاتے ہیں, جیسے حقوق اللہ ہے, حقوق العباد ہے, گھر کی ذمہ داریاں ہیں, سماج کی ذمہ داریاں ہوتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر انسان بخودی اپنے ہر کسی کام میں احساس ذمہ داری کو پیدا کرے گا تو سب سے بڑی عبادت یہی ہوگی.
صحیح
مشتاق, اپنی تمام ذمہ داریوں کو.
جی مشتاق احمد صاحب, میں یہاں پہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ اپنی ذمہ داریوں کو کس حد تک نبھاتے ہیں؟
میں مطلب ایسے بتانا چاہوں گا کہ مجھے اپنی ڈیوٹی پہ جانا ہوتا ہے تو میں صبح سویرے ہی اپنے گھر کو اپنے بچوں سے جدا ہو کے نکلتا ہوں اپنے کام پہ, احساس کرتا ہوں کہ ہاں میرے اوپر بھی ذمہ داری ہے, گھر کے اندر بھی میری بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں اپنے بچوں سے, ماں باپ سے. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے ذمہ داریوں کو آسان طریقے سے پورا کر پاؤں, اور ایسا کریں گے تو تبھی جا کے ایک انسان, مکمل انسان اپنی انسانیت کو پیش کر سکے گا دنیا میں. میں ہر وقت یہی کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی ذمہ داریوں کو آسان طریقے سے انجام پذیر ہوں.
جی اچھا مشتاق صاحب, میں ایک سوال اور پوچھنا چاہوں گی, آپ کی نظر میں گھر کی ذمہ داری زیادہ ضروری ہے کام کی ذمہ داری؟
مطلب گھر میں بھی کام ہوتے ہیں, گھر سے باہر بھی کام ہوتے ہیں, ہر کسی کام کو جو اس کے اوپر لازم ہو چکے ہیں ان کو آسان طریقے سے انجام دینا اسی کو ذمہ داری کہا جاتا ہے.
جی جی بہت بہت شکریہ مشتاق صاحب, آپ نے کال کی ہم کو, بہت بہت شکریہ, آگے کے پروگراموں میں ہمیں کال کرتے رہے گا.
جی ڈاکٹر صاحبہ, آپ کیا کہنی چاہیں گی اس ذمہ داری کے موضوع کے سلسلے میں؟
احساس ذمہ داری آپ کہہ لیں, سب سے زیادہ جو ڈاکٹروں کی تو گردن ایسے پکڑتا ہے کہ یعنی
سب سے
باریک گردن جو ہے وہ ڈاکٹرز کی, یعنی آپ,
میرے خیال میں آپ نے جو ہے ساری بات کر دی ہے اور آپ نے کچھ
چھوٹے سے بات میں پوری انہوں نے بات کیا جو ہے وضاحت کر دی.
بالکل نہیں, میرے خیال میں جو ہے احترام جو ہے ڈاکٹرز کا اسی میں ہے کہ جو آپ نے بات کی بالکل وہ جو ہے اس کو یہاں پر جو ہے آپ سے اجازت لے لیں, کیونکہ واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے ڈاکٹرز جو ہے ہاسپٹل میں پوری اپنا محنت کے ساتھ پورے زور کے ساتھ جو ہے اپنی انرجی لگاتے ہیں, اگر کہیں کوتاہی ہو جاتی ہے تو میرے خیال میں ذمہ داری کے ساتھ ساتھ بخشش بھی ہمارے دین میں ہے, معاف کرنا بھی ہمارے دین میں ہے, اور دوسرے کے درد کو سمجھنا بھی ہمارے دین میں موجود ہے. بھارت ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ جو ہے ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں, اپنے ٹائم دیا, اور بڑا اہم موضوعات اگر میں کہوں جن پہ ہماری جو ہے بات چلی, بہت شکریہ.
میں بھی یہاں پہ ڈاکٹر صاحبہ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. بہت بہت شکریہ آپ کا. جی ناظرین چلتے ہیں, دیکھتے ہیں ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, امیدوار ہے آپ کو ناصر عبداللہ کی آواز میں یہ گانا بہت پسند آیا ہوگا, بہت خوبصورت مناظر اور بہت بہت خوبصورت ترجموں کے ساتھ. میں چلتی ہوں اس طرف خورم بھائی کے پاس. جی اور بتائیے,
آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم یہاں پر.
جی
اور ہمارے ساتھ جو ہے سید باقر رضا قاسمی صاحب لائن پہ موجود ہیں, مذہبی امور کے ماہر ہیں, اور ان سے ہم جو ہے ہفتے کے موضوع کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے. سلام عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں باقر صاحب.
السلام علیکم کرم بھائی, میں بھی آپ کی خدمت میں, تمام ناظرین کی خدمت میں, آپ کی پوری ٹیم کو میں سلام کرتا ہوں اور خوش آمدید اس پروگرام میں میں بھی اپنی طرف سے کہتا ہوں اور صبح بخیر.
بہت بہت شکریہ, اور بڑے انرجی سے بھرپور باقر صاحب آپ نظر آ رہے ہیں, تو ہمارے ناظرین کو بھی یہ انرجی منتقل کریں اور ان کو بتائیں کہ احساس ذمہ داری کیا ہے اور کتنی ضروری ہے.
صحیح, میں پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں باقر, آپ نے مجھے موقع دیا.
جی
سب سے پہلے میں کہنا چاہوں گا کہ انسان کی سب سے بڑی جو خصوصیت ہے اور اس کی کوالٹی ہے وہ یہی کہ ایک ذمہ دار مخلوق ہے.
ٹھیک ہے,
دوسری جتنی تمام جاندار چیزیں ہیں ان کے اندر بھی ایک حد تک ذمہ داری ہوتی ہے, لیکن انسان کی جو ذمہ داری ہے وہ سب سے فرق کرتی ہے.
صحیح ہے,
وہ یہ کہ اس کے ہر عمل کے بارے میں اس سے سوال ہونا ہے.
صحیح ہے,
حضرت رسول جیسے آپ فرماتے ہیں اپنے ایک چھوٹے سے قول میں کہ تم میں سے ہر آدمی مسئول ہے, اور ہر آدمی جو بھی تم ہو اور جو بھی تم کچھ کرتے ہو ہر عمل کے بارے میں تم سے سوال ہونا ہے, اس لیے تم تیار رہو, ایک طرح سے تم ذمہ دار ہو اپنے ہر کام کے. دیکھیے جہاں بھی خوبی ہے دنیا میں, جہاں بھی نظم ہے, جہاں بھی ڈسپلن ہے,
جی
اس کے پیچھے ایک ذمہ داری ہے, اس کے پیچھے ایک احساس ذمہ داری ہے. کہیں بھی آپ ڈسپلن دیکھیں, کہیں بھی آپ خوبی دیکھیں گے, اچھائی دیکھیں گے, تو وہ ایک ذمہ داری کا اور احساس ذمہ داری کا نتیجہ ہوتا ہے. میں چھوٹی سی مثال دے دوں یہیں پہ کہ شاید وہ ایک اچھی مثال ہو ناظرین کے لیے بھی. جیسے اس وقت آپ سپوز اس وقت اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں, بہت اچھے سے پروگرام آپ کر رہے ہیں,
بہت شکریہ.
اور اس وقت جو یہ اچھا پروگرام اسکرین پر آ رہا ہے
جی,
یہ نتیجہ اس بات کا ہے کہ جو ذمہ دار لوگ ہیں اس میں
جی
وہ اچھے سے اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں.
بے شک, بالکل صحیح کہا آپ نے.
اگر کہیں بھی کوئی کہیں پہ گڑبڑی کرتا ہے, اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے پورا نہیں کرتا ہے یا اس کے اندر احساس نہیں ہے, تو اس پروگرام میں خرابی آ سکتی ہے.
بالکل صحیح,
کہیں بھی کمی اگر کہیں بھی ہے, کوئی برائی ہے, بے نظمی ہے, تو وہاں پہ مطلب یہ ہے کہ یہ تو ہم ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہیں.
صحیح,
یہ کہ ہمیں احساس نہیں ہے ذمہ داری کا.
صحیح,
تو یہ ایک بہت اہم فیکٹر ہے انسان کی زندگی میں کہ اس کو تیار رہنا چاہیے کہ ہر عمل جو بھی کچھ وہ کرتا ہے اس کے بارے میں اس کو جواب دینا ہے. تو امام علی علیہ السلام اس طرح فرماتے ہیں کہ تم اپنی زندگی کے بارے میں تو ذمہ دار ہو ہی, اور اس کے ساتھ ہی جو تمہارے آس پاس جو حیوانات ہیں
جی
یا جو جگہیں جو تمہارے اختیار میں آتی ہیں جن کو تم استعمال کرتے ہو, ان کے بارے میں بھی تم سے سوال کیا جائے گا.
صحیح ہے
کہ تم نے فلاں مثال کے طور پر تم کسی جانور سے تمہارا صافہ پڑا تھا, اس کے ساتھ تم نے کیا کیا.
صحیح,
کوئی جگہ تمہارے ہاتھ میں آئی تھی, اس جگہ کو تم نے کیسے استعمال کیا.
صحیح ہے.
اور آپ تاکید کرتے ہیں امام علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ سے ڈرو ان معاملات میں, کہ اگر کوئی جگہ تمہارے ہاتھ میں آتی ہے, تمہارے اختیار میں آتی ہے, اس کا غلط استعمال کرو, یا کوئی جانور جس سے تم گفتگو ہوتے ہو اس کے کسی حق تم پامال کرو مثلا.
صحیح, باقر صاحب بہت بہت شکریہ, بہت مفید آپ نے گفتگو کی. صرف ایک چیز یہاں پر میں جلدی سے آپ نے پوچھنا ہوں گا, وقت ہمارے پاس کم ہے. ہمارے یہاں لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ان کو کوئی عہدہ ملتا ہے تو بہت خوشی کا احساس ہوتا ہے انہیں. کیا عہدہ ملنا خوشی کا احساس ہے یا پریشانی کا احساس بھی اس میں تھوڑا سا ہونا چاہیے, کیونکہ ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں؟
جی, یہ آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا. دیکھیے, عہدہ جب ملتا ہے میں سمجھتا ہوں خوشی سے پہلے اس کو تھوڑا سا ایک طرح سے فکر مندی ہونی چاہیے.
جی جی,
کیونکہ اس کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری کا بوجھ آ چکا ہے, اور اس کو جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ اگر ایک ذمہ داری انسان کے کاندھے پر آئی ہے تو پھر اس طرح سے وہ مسئول ہے, یعنی یہ اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا.
سوال کیا جائے گا, بالکل.
بہت بعد میں ہو, پہلے فکر مند ہو وہ
کہ
کس طریقے سے وہ اپنی ذمہ داری کو اچھے سے ادا کر سکتا ہے.
بہت بہت شکریہ باقر صاحب. جی, چاہ رہا تھا آپ سے لمبی بات کی جائے لیکن وقت محدود ہے, ہمیں پروگرام کو جو ہے وہ وائنڈ کرنا ہے. بارہ بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام میں جوائن کیا.
بہت شکریہ,
بہت شکریہ. جی رباب, جو ہے بہرحال جہاں پر جیسے کہ باقر صاحب نے بھی کہا کہ جہاں پر آپ کے اوپر آپ کو کوئی عہدہ ملتا ہے, کوئی آپ کو مال ملتا ہے, یعنی بے شک وہ آپ کا اپنا مال ہی کیوں نہ ہو, بے شک وہ کسی اور کا مال ہے, مثلا جیسے کچھ جگہوں پر ہوتا ہے کہ حکومت کی طرف سے آپ کو پیسہ دیا کہ آپ فلاں جگہ پر خرچ کریں, تو اس میں میرے خیال میں انسان کو بہت زیادہ نگرانی, پریشانی اور تھوڑا سا یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بہت بڑی ذمہ داری جو ہے اس میں انسان کے اوپر آ گئی ہے. ہمارا جو کل کا موضوع رہے گا اس میں جو ہے ہمارے ساتھ مترا کاری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی, اور جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے بدھ کے دن ہم ہفتے کے ہی موضوع کے اوپر گفتگو کرتے ہیں, یعنی ذمہ داری کا احساس.
تو ناظرین, آپ کے ای میلز وغیرہ, آپ کے جو بھی سوال ہیں ہمارے کو بتائیے, ای میلز کے تھرو, کال ریکارڈرز کے تھرو, ہم آپ کے سوالات کے منتظر ہیں. جی خورا, میں یہاں پہ خالی سید باقر کی ایک بات مجھے بہت پسند آئی کہ انہوں نے حضرت علی کا جو بتایا فرمان بتایا کہ ہماری اپنی ذمہ داری بھی ہے, ٹھیک ہے, ایک تو وہ ہے, لیکن ہمارے آس پاس ہمارا ماحول, حتیٰ وہ جو انہوں نے بتایا جانور حیوانات جو ہمارے, ان پہ بھی ہمارے کچھ وہ بنتے ہیں. بہت انہوں نے یہ خوبصورت بات کی, مجھے بہت پسند آئی ان کی, کہ صرف ناظرین ہم خود ہی نہیں ہیں, ہمارا ماحول, ہماری ذمہ داریاں جو ہمارے اوپر ہیں, ہمارے آس پاس کے ماحول پہ بھی کافی کافی گہرا اثر رکھتی ہیں.
صرف آخر میں ایک بات کہنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ ذمہ دار شخص وہ ہے جو اپنے ماضی میں پھنسا نہیں رہتا, بلکہ وہ اپنے فیوچر, اپنے آئندے کے بارے میں سوچ کرتا ہے, پلان کرتا ہے اور اپنی زندگی کو اس طرح ہی چلانے کی کوشش کرتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, خدا تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ رزق حلال کما سکیں. کل تک کے لیے مجھے اور رباب کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.